अक्टूबर 1962 लखनऊ में होने वाले बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सैनिक जोरदार तैयारी कर रहे थे। सब खेल में मग्न थे कि अचानक युद्ध का बिगुल बजा और वे चौकन्ने हो गए और सैनिकों को अपनी अपनी बटालियन ज्वाइन करने का आदेश मिला। एक सिख रेजिमेंट को जयपुर से NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में तैनात होने का आदेश मिला। यह क्षेत्र अब अरुणाचल प्रदेश में है। 23 अक्टूबर 1962 एक सिख बटालियन के सूबेदार जोगिंदर सिंह लगभग 29 सैनिकों की प्लाटून के साथ तवांग के पास बुमला पास पर भारतीय पोस्ट संभाल रहे थे। सुबह के 5:30 बजे जब तवांग पोस्ट के आर्मी किचन में चाय बन रही थी, अचानक चीनी फौज ने हमला बोल दिया। सिख रेजिमेंट के सैनिक जवाबी हमले के लिए तुरंत तैयार हो गए। चीनी सैनिकों के 2 आक्रमणों को विफल कर दिया गया जिसमें शत्रु को भारी क्षति पहुंची, पर कुछ ही समय में चीनी फौज ने तीसरा धावा बोल दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भारतीय प्लाटून के तब तक आधे जवान शहीद हो चुके थे, उनका गोला बारूद भी खत्म हो गया था। सूबेदार जोगिंदर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, इसका जय घोष करते हुए ये सिख रेजिमेंट के सैनिक अपनी अपनी बंदूकों पर लगे बेयोनेट यानी संगीन से शत्रु पर हमला बोल दिया और कईयों को मार गिराया। इस महासंग्राम में सूबेदार जोगिंदर सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया। वे कभी अपने वतन नहीं लौट पाए क्योंकि कुछ दिनों बाद ही दुश्मन के खेमे में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य शौर्य, प्रेरणादायी नेतृत्व, अद्भुत साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए आज हम सब भारत माता के इस वीर सपूत को नमन करते हुए इनकी शौर्य गाथा सुनते हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। नन्हे जोगिंदर को स्कूल जाना और पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। वे एक अच्छे विद्यार्थी थे, परंतु उनके माता पिता गरीब थे और पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे। उस समय कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात जरूर आती होगी कि उनका जन्म किसी विशेष और सम्मानीय कार्य करने के लिए ही हुआ है। अपनी अलग पहचान बनाने और जीवन के उद्देश्य की खोज में युवा जोगिंदर सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो गए और उन्हें 28 सितंबर 1936 को सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में तैनात किया गया। वे खेत में काम करने वाले किसान के बेटे थे, कठिनाइयों से जूझना और कड़ी मेहनत करना भली भांति जानते थे। भारतीय सेना के मेहनती जवान जोगिंदर सिंह निष्ठापूर्वक कर्तव्य निभाते गए, साथ ही मन में पढ़ने लिखने का सपना भी बुनते रहे। जल्द ही उन्होंने सेना की विभागीय परीक्षाएं पास कर ली और यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए। यह उनके परिवार के लिए अत्यंत गौरव की बात थी। एक समर्पित और अनुशासित सैनिक होने के कारण यूनिट के जवान उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध तथा 1947-1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया। अक्षाई चीन का क्षेत्र भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद का कारण रहा है और उसके बाद दलाई लामा का भारत में शरण लेना चीन को बिल्कुल न भाया। विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। चीन को भौगोलिक लाभ प्राप्त था जो भारतीय सेना के लिए चिंता का विषय था। इसके साथ ही सेना का मानना था कि कई छोटी छोटी भारतीय पोस्टों को बनाए रखना असंगत था। एक ओर जहां हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ चाइनीज प्रीमियर भारत घूम रहे थे, पंडित नेहरू ने यह मान लिया था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन चीन ने भारत के विरुद्ध भयंकर युद्ध की साजिश रच ली थी। युद्ध की तकनीकों और कौशल का विराट अनुभव लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह एक मझे हुए योद्धा थे। बुमला पास की पोस्ट पर उनके साथ केवल 29 सैनिक थे। सैनिकों के पास गर्म कपड़ों की कमी थी और लड़ने के लिए आधुनिक हथियार भी नहीं थे। परिस्थितियों और समय की नजाकत को समझते हुए वे जान चुके थे कि यह युद्ध साहस, समझदारी और बुद्धिमत्ता से ही जीता जा सकता है। 20 अक्टूबर की भोर थी जब असम राइफल्स की बमला आउटपोस्ट के एक जेसीओ ने देखा कि बॉर्डर के पार सैकड़ों की तादाद में चीनी फौज जमा हो रही है। उन्होंने 11वीं प्लाटून को सावधान कर दिया। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर को नमखाचू सेक्टर और लद्दाख समेत पूर्वी सीमा के अन्य हिस्सों पर एक साथ हमला बोल दिया। 3 दिनों में उसने भारतीय जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब चीन को तवांग पर कब्जा करना था। उसे तवांग पहुंचने से रोकने का काम भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन को दिया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने वहां की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझा और स्थानीय संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आईबी रिज पर चतुर प्लानिंग के साथ पहले ही बंकर बना रखा था। उनकी पलटन के पास सिर्फ 4 दिन का राशन था। हिमालय के सर्द मौसम में उन लोगों ने साधारण जूते और कपड़े पहन रखे थे। सिख पलटन के पास पुरानी हो चुकी ली एनफील्ड 303 राइफल्स थी, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने साथियों का मनोबल बनाए रखते हुए कहा कि वे सब मिलकर दुश्मन को कुचल देंगे। सूबेदार जानते थे कि चीनी फौज बमला से तीखी चढ़ाई करके आ रही है और भारतीय जवानों की आईबी रिज की पोजीशन मजबूत है। उनके पास गोलियां कम थीं, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि हर गोली का हिसाब होना चाहिए। जब तक दुश्मन रेंज में ना आ जाए तब तक फायर रोक कर रखें, उसके बाद चलाएं। 23 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे चीनी सेना ने मोर्टार और बंदूकों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी ताकि भारतीय बंकर नष्ट किए जा सके। फिर 6 बजे उन्होंने असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला बोला। श्री सुचा सिंह जी ने वहां मुकाबला किया, लेकिन फिर अपनी टुकड़ी के साथ आईबी रिज की पलटन के साथ हा मिले। सुबह की पहली किरण के साथ फिर चीनी सेना ने आईबी रिज पर आक्रमण कर दिया ताकि ट्विन पीक्स को हथिया लिया जाए। पहले हमले में करीब 200 चीनी सैनिक थे, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके साथियों ने चीनी सेना का बुरा हाल कर दिया। दुश्मन के कई सैनिक घायल हो गए। भारतीय सैनिकों का हमला इतना प्रखर था कि चीनी सेना को पहले छुपना पड़ा और फिर पीछे हटना पड़ा। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने टोंग पेंग ला के कमांड सेंटर से और गोला बारूद भिजवाने के लिए कहा, पर इससे पहले सहायता पहुंचती 200 की सैनिकों की एक और चीनी टुकड़ी फिर से एकत्रित हुई और भारतीय पलटन की नजरों से बचकर ऊपर चढ़ गई। भयंकर गोलीबारी हुई। सूबेदार जोगिंदर सिंह की जांघ में गोली लगी। वे एक बंकर में घुसे और वहां पट्टी बांधी। विषम परिस्थितियों में भी वे पीछे नहीं हटे और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर निर्देश देते रहे। उनके गनर भी शहीद हो गए तो उन्होंने 2 इंच वाली मोर्टार खुद ले ली और कई राउंड दुश्मन पर चलाए। उनकी पलटन ने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार दिया था, लेकिन कई भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके थे या बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ विराम के बाद तीसरे हमले के लिए चीनी फौज की 200 सैनिकों की टुकड़ी फिर एकत्रित हुई। डेल्टा कंपनी के कमांडर लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक ने आने वाले खतरे को भांपते हुए रेडियो पर संदेश भेजा, जिसे रिसीव करके सूबेदार जोगिंदर सिंह ने जी साफ कहा, जो अपनी पलटन को भेजे उनके आखिरी शब्द थे। अब उनके पास बारूद खत्म हो चुका था। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने बचे हुए सैनिकों के साथ अपनी अपनी बंदूकों पर लगे बयोनेट यानी संगीन से चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया। हवा में लहराती उन जवानों की खुली हुई दाढ़ी, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जय घोष करते हुए तूफान की तरह हुए आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक यह देखकर बुरी तरह डर गए। दुश्मन को लगा ये मुट्ठी भर सैनिक कहर ढा देंगे। घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अकेले 56 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, पर उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। वे कभी अपने वतन न लौट पाए, क्योंकि कुछ दिनों के अंतराल में दुश्मन देश में वे वीरगति को प्राप्त हुए। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, प्रेरणादायक नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह जानकर चीनी सरकार ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को उनकी अस्थियां भारत सरकार को सौंप दी।